राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 नवंबर 1992 को दोपहर लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम
वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण 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 नारायण। कामना के त्याग कर दिया तो प्रेम व्याकुल नहीं देखने वाती है। तो वास्तव में कामना का त्याग कर दिया इसका क्या पता है, कामना मिट गई इसका क्या पता है, क्या जीने की इच्छा नहीं होती है। कामना का त्याग हो गया तो अब जीने की इच्छा नहीं होती है क्या, जरूर देखे तो मेरी आशी में कामना का त्याग हो गया ना, और व्याकुलता के लिए सुख बुद्धि से कोई काम न करिए। साधन है असली खाना पीना आदि काम है, सोना है, जगना है, बात करना है, व्यवहार करना है, किसी में भी सुख न ले, मन रमन न करे तो व्याकुलता होगी। व्याकुलता के लिए कोई साधन करने से नहीं होती हो। व्याकुलता तो एक बड़ी विलक्षण चीज है जो संपूर्ण कर्मों को, अनंत धर्मों कर्मों को भस्म कर देती, ऐसी चीज है वो, यूं क्रिया साध्य नहीं है, विवेक विचार से होती है और होती है सुख बुद्धि से। किसी चीज का सेवन न करे नहीं, सुख बुद्धि से किसी चीज का, किसी प्रवृत्ति का, किसी निवृत्ति का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का, किसी घटना का, किसी अवस्था का सुख बुद्धि से अनुभव न करे, सुख बुद्धि से भोग न करे। किसी बात के भी सुख बुद्धि से भोग नहीं करेगा जागृत होगी। एक आदमी जब मेरे को भूख नहीं लगती, पूछा जाए क्या करता हूँ, सुबह थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, थोड़ी मलाई खा लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, तो तीन प्रकार खाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा फल खा लेते हैं, थोड़ा फलों का रस ले लेते हैं। इसने बताया तो शाम तक बकरी से जो चरता है भूख नहीं लगती। भूख क्या होता है, रोटी खाओ तो भूल, ये भूख नहीं नहीं। शाम को ये भूख होते हैं, राशि मास से दूध पी लेते हैं, भूख नहीं लगती। ऐसे सुख जगह जगह सुख ले रहे हो, व्यवस्था नहीं होती। कैसे व्यवस्था हो, बकरी की तेज सर से हो रहा है, सुख बोलते हुए कैसे होगी, सुख भोगी बोलते हुए। चला शांतिरंतरम साधक संजीवनी के पुनः पुनः अध्ययन से त्याग के स्वरूप की बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया बात है, कर्म फल त्याग के पालन करते समय साधक के भीतरी अंतःकरण में एक त्याग वृत्ति का आभास होता रहता है। ये चीज है ना, कर्म फल त्याग करते पालन त्याग के पालन करते करते त्याग का पालन नहीं होता है। त्याग का पालन क्या त्याग कर दिया खत्म हो पालन क्या था त्याग का कोई अभ्यास हो कोई क्रिया हो तो बार बार किए जाए त्याग का पालन क्या करे पालन करते समय साधन के भीतरी अंतःकरण में त्याग वृत्ति का आभास होता रहता है जिससे शांत स्थायी नहीं पैर नहीं है पाती तो त्याग वृत्ति का नाश कैसे हो त्याग करने पर त्याग वृत्ति नहीं रहती है त्याग है उसका अभिमान रहता है उस अभिमान की आश्रित रहती त्याग वृत्ति अभिमान नहीं होना चाहिए साधक समझने के गंभीर मन करने से यह बात समझ आ गई कि भगवत कर्म अभ्यास योग इन दोनों साधनों में भी फल सफलता कर्म का त्याग करने पर ही आधारित है। ठीक है भगवान ने इतनी बढ़िया बात बारह संकेत अर्जुन को भगवत कर्म और अभ्यास योग के बाद क्यों किया इसमें क्या मालिक बात है पता नहीं क्या है भगवान जाने अर्जुन जाने में त्याग के बाद करना कुछ नहीं पड़ता है त्याग शांति अनंतरम अनंतर का अर्थ है तत्काल त्याग हुआ शांति मिली उसी क्षण शांति नहीं मिली तो त्याग नहीं हुआ है ये बात कदे भगवान के प्रति मेरा वास्तविक भाव है जब मैं तत्व ज्ञान ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात सुनती हूँ तो उसका अनुभव भी हुआ है पर अब उसकी सर्वज्ञता सर्वव्यापकता का चिंतन होने से विनय की व्यवस्था खत्म सी हो गई है। देखो साधकों की बड़ी शोचनीय दशा हो रही है क्या करें बताओ मन भगवान का वात्सल्य प्रेम ज्ञान की बात सुनने से रह जाए भगवान शंकर और शंकराचार्य ज्ञान कम जानते हैं क्या आपने लीला नहीं देखी शंकर कहते हैं मैया दर्शन कर देते लाला का दर्शन कर दे ना मैं नहीं कराऊंगी ए मैं इतनी बूढ़ी हो डरती हूँ मेरा लाला डर जाएगा शंकर हट करते हैं दर्शन कर ले लाले का तो लाले के दर्शन की भूख मिट जाए ज्ञान से ज्ञान नहीं अज्ञान है वो कोई नकली से नकली असली नहीं है नहीं है नहीं है प्रेम और ज्ञान दोनों एक एक के सहायक है क्योंकि हमारे हम भेदवादी मातवादी से है उनका संग बड़ा खराब है ये पोथी बात है केवल अनुभव है ही नहीं सीधी बात अनुभव होगा तो प्रेम में ज्ञान ज्ञान में प्रेम वो तो पोथ होता है एकदम ज्ञान अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है ये प्रेम है जो प्रिय लगता है इसका नाम प्रेम है जहाँ अच्छा लगे जहाँ ज्ञान हुआ अच्छा लगता है आनंद आता है प्रियता लगती है ज्ञान होगा तो ज्ञान होते ही प्रसन्नता होती है कि नहीं सबके अनुभव की बात है ये बिल्कुल अनुभव की बात है बिल्कुल नित्य सच्ची पक्की ठोस एक तारा चाबी है उसकी चाबी कैसे लगे बताइए ऐसे लगेगी उसमें एक आनंद आता है ज्ञान के साथ ही आनंद आएगा सच चित्त आनंद है तो चित्त ज्ञान में होते ही आनंद आवेगा ही ऐसे ज्ञान में आनंद वो प्रेम का है वो प्रिय लगता है रहता है प्रेम होता है तो ज्ञान में प्रेम प्रेम में ज्ञान सदा शांत रहता है शांत आनंद की स्थिति रहती है भावराज की साधना ही नहीं रही है, मानसिक पूजा भी शंकर विक्रम से ही लगता है, तो वैसे रहो क्या मत करो, साथ मिलते ही रहो। और तो हमारी बात समझ में नहीं आती, असली प्रेम होगा तो ज्ञान होगा, और असली ज्ञान होगा तो प्रेम होगा, ये एक नियम है। सीखी हुई प्रेम ज्ञान की बातें है ना, सीखी हुई, उनसे ही गलती होती है। कैसे कहूं मैं, ज्ञान की बातें सीख लेता है ना तो ध्यान करके चुप रहता है तो वो शांति नहीं है। ध्यान करके लिया, अभ्यास कर लिया, एक मान्यता होती है और मान्यता भी ज्ञान की तरह ही दिखती है, परंतु ज्ञान नहीं है वो। शांति मिलती है ज्ञान की तरह ही दिखती है, परंतु मान्यता होती है, मान्यता में अंतकरण होता है, ज्ञान में अंतकरण के संबंध विच्छेद की बात है। बोध होते ही अंतकरण से अपना संबंध विच्छेद हो जाता है, ज्ञान बिना जो प्रेम है वो आसक्ति है, कामना है, और प्रेम बिना जो ज्ञान है वो शून्य है, शून्यवाद है, कुछ नहीं, और कुछ दिखते नहीं। दूर बस याद कर दो और इसमें शंका करो, अभी फिर कर लेना। ज्ञान बिना जो प्रेम है ना, तो ज्ञान बिना प्रेम है आसक्ति, कामना, वासना, आशा, तृष्णा, वांगना, ये है। ज्ञान बिना प्रेम नहीं है, आसक्ति है, तो ज्ञान बिना प्रेम आसक्ति का नाम है, और ज्ञान बिना प्रेम है वो शून्यवाद है, शून्य कुछ नहीं, नास्तिकता में शंका करो। जो संदेह हो बोलो, बात करें, बहुत बढ़िया बात होगी। ज्ञान में प्रेम, प्रेम में ज्ञान, ओतप्रोत है, ये बातें हैं। अगर आप गीता पढ़ते तो ये बैम नहीं होता, उसी पुस्तक पढ़ते हैं ना उसे ऐसा होता है। गीता क्या कहती है देखो, सातवें अध्याय का आरंभ होता है बारहवें तक, ये बीच में उपासना कांड कहते हैं। पहले छह अध्याय का कर्म कांड, छह अध्याय का उपासना कांड, छह अध्याय का ज्ञान कांड, ऐसे श्री मधुसूदनाचार्य ने अपने गूढ़ास लिपि का नाम की संस्कृत टीका उसमें कहा है। छध्याय एक ही शतक है, कर्म का कर्म और उपासना और ज्ञान ऐसे, परंतु विचार करने से ये भी पूरा खरा नहीं उतरता है, मुख्यता है उसमें, मुख्यता बताई जा वो मैंने से लिखा है, लेख लिखा हुआ है। पहले कांड में कर्मों का विशेष वर्णन है, जितना पहले कांड में, पहले छह अध्यायों में कर्म का वर्णन है, उतना अंतिम शतक 13 से 18 तक में उतना ज्ञान का वर्णन नहीं है। ज्ञान कांड कहलाता है, मैं कर्म का वर्णन ज्यादा है, और मध्य कांड में जितना भक्ति का वर्णन है उतना ना पहले कांड में कर्म का वर्णन है ना अगले कांड में ज्ञान का वर्णन है। भक्ति का ज्ञान मुख्यता से है, सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय से, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये बात है। आप लिख लो, बात बताओगे लिख लो। छठे अध्याय का 47वां श्लोक, सातवां अध्याय का पहला श्लोक और सातवां अध्याय 29 और 30वां श्लोक, बारहवां अध्याय का दूसरा श्लोक और बारहवें अध्याय का अंतिम श्लोक, ये मिलते जुलते हैं। जिसमें योगी नाम सर्वेशम योग दृष्टि की बात कहते कहते भगवान ने योग की महिमा कही, तपस्वी भ्योधिको योगी और ज्ञानी भ्यो भी मतोधिक और कर्मी भ्यस्ताधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन, ये छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है। सातवें अध्याय की समाप्ति जब करते हैं भगवान मुनि छठे अध्याय की, तो छठे अध्याय में योग दृष्टि का प्रसंग आता है। उसमें कहा योगा चलित मानस अप्राप्त योग सिद्धि कांग कृष्ण गच्छति। कहते हैं महाराज अंत में योग से मन चलित हो जाए तो संसार को तो चाहता नहीं, परमात्मा मन लगा नहीं, उसकी क्या दशा होती है। अयति ही श्रद्धयोगे तो योगा चलित मानस अप्राप्त योग सिद्धि कांग कृष्ण गति कांग कृष्ण गति कच्चिन्नो छिन्नाभिनश्यति अप्रतिरूपो महाबाहो विमूढो नापि। एतन में संशय कृष्ण क्षेत्रता तदन्य संशयता में उपजती। ये तीन श्लोक अर्जुन ने कहे, आप कृपा कर ध्यान दें, लिख लें, सिद्ध कर लें, गीता देख लें। गीता में कृष्ण संबोधन है, अर्जुन के द्वारा कृष्ण संबोधन 9 बार आया है। 9 बार में 2 बार में 2 श्लोकों में आ गया, 7 अध्याय 7 तो मिला सब गीता को, इन 3 श्लोकों 2 बार कहा। कांग गति कृष्ण गच्छति और एतल में संशय कृष्ण, 3 श्लोक 2 बार श्लोक कृष्ण आ गया। पूरी गीता को 7 मिला, 9 अध्याय 9 ही संबोधन है कृष्ण नाम के संबोधन 9 ये गीता भर में। तो इस बात को लेकर अर्जुन की व्याकुलता है, वो योग भ्रष्ट कौन होता है। एक साथ उन्होंने कर्ण सापेक्ष, एक साथ होता है कर्ण निरपेक्ष। भक्ति है, योग है, कर्म योग है और ज्ञान भी, ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, परंतु ध्यान योग कर्ण सापेक्ष है। छठे अध्याय में ध्यान ही का वर्णन है, तो ध्यान योग में कर्म योग भ्रष्ट होता है, विवेक मार्ग में योग भ्रष्ट नहीं होता, भक्ति मार्ग में योग भ्रष्ट नहीं होता, योग मार्ग में योग कर्म ये योग भ्रष्ट नहीं होता, ध्यान योग में होता है। ध्यान योग में मन लगाना पड़ता है, ज्ञान योग में मन के साथ संबंध विच्छेद करना होता है, कर्म योग में मन सेवा में लगाना होता है लोगों में, ये इनका भेद है। जहाँ मन लगाकर चिंतन किया जाएगा वहाँ योग भ्रष्ट होगा। पर योग भ्रष्ट होगा ये नियम नहीं कहता हूँ मैं, योग भ्रष्ट होने की संभावना वहाँ ही है जहाँ मन को लगाकर साधन किया जाएगा, चाहे ज्ञान का करे, चाहे भक्ति का करे, चाहे कर्म का करे, चाहे और कोई करे। अष्टांग योग है, भक्ति योग है, लय योग है, राज योग है, मंत्र योग है, अनासक्ति योग है, अनेक योग है। जहाँ मन बुद्धि लगा करके साधन किया जाएगा वहाँ योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। जहाँ विवेक प्रधान होगा, जड़ चेतन दोनों का विवेक मानो अलग अलग बना, वहाँ योग भ्रष्ट नहीं होगा। कारण क्या है कि ये मन बुद्धि अहंकार ये सब प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति और पुरुष का होता है विवेक। ये एवं व्यक्ति पुरुष प्रकृति से गुणे ही सह 13वां अध्याय। तो प्रकृति अलग है, गुणों के साथ प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। ऐसा जहाँ साधन होगा विवेक प्रधान, वो योगा चरित मन से क्या हुआ उसके, वो योग से चरित मना कैसे होगा, मन है ही नहीं वहां। इसमें कोई शंका हो तो पूछो, बीच में समझ में नहीं आया हो तो पूछने से बहुत विषय खुलता है। परंतु समझ लो इस बात को, साधन किया जाता है एक कर्ण सापेक्ष, एक कर्ण निरपेक्ष। कर्ण रहित नहीं कहता हूं, ख्याल करना, कर्ण रहित नहीं कहता हूं, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष। कर्ण सापेक्ष में क्रिया की प्रधानता रहती है, चाहे बाहर की क्रिया हो, चाहे मन का चिंतन हो, चाहे ध्यान हो, आभ्यंतर क्रिया हो, क्रिया प्रधान रहती है कर्ण सापेक्ष। और विवेक प्रधान साधन होता है, उसमें जड़ चेतन का विवेक होता है। तो जड़ में प्रकृति, प्रकृति का कार्य सबका सब एक तरफ हो जाता है, और जो चेतन है वो एक तरफ हो जाता है, उसमें योग भ्रष्ट कैसे होगा। योगा चरित मना होगा ना, योग से मन चलायमान होगा तब ना योग भ्रष्ट होगा। मन से आप चिंतन करोगे तो वह योग भ्रष्ट होने की संभावना है। गीता साधक संजीवनी में यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युते तदा। इनको याद रखो, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, ये ध्यानियों का अभ्यास है। 10वें श्लोक से चलता है, 9 श्लोकों तो कर्मियों का है, 10वें श्लोक से ध्यान योग करके चलता है। तो ध्यान योग करते करते चित्त अपने पर, जो कि पातंजलि योग दर्शन का खास है, खास पातंजलि दर्शन है चित्त वृत्ति निरोध। तो पातंजलि योग दर्शन एक तो योग है, एक गीता का योग, इसमें बड़ा अंतर है। इनके लक्षण एक नहीं है। पातंजलि तो कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध। तो चित्त की वृत्ति है मूड है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध है, 5 भूमिका होती है चित्त की। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इसमें मूड और क्षिप्त वाला ध्यान योग का अधिकारी नहीं है, विक्षिप्त वाला अधिकारी है, और एकाग्रता में समाधि है, और विरुद्ध में खास समाधि है, अंतिम भूमिका है निरुद्ध। तो तो योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, इसका नाम है योग। गीता की परिभाषा ये नहीं है। उस योग का फल बताया है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। ख्याल में ठीक से समझ लो, तो वृत्तियों के निरोध होने से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। वो स्वरूप में स्थिति होने का नाम योग है, गीता का योग। समत्वम योग उच्यते, या निरोध का नाम योग नहीं, समता का नाम योग है। सिद्धि सिद्धियों समभूत, सिद्धि असिद्धि में सब। ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो वो ज्ञान का अभ्यास सिद्ध हो न सिद्ध हो, चित्त में विषमता नहीं होनी चाहिए। जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, चित्त में समता हो गई, तो यही वो सर गए थे। यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, संसार को ऊंचा उठ गए। संसार क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक है बेटी है, सुख है दुख है, घाटा है नफा, अनुकूल है, ये संसार, संसार स्वरूप है ये। तो ये दो नहीं रही, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, न राजी है न नाराजी है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न सुख है न दुख है। समता जहां आ जाती है वहां वृत्तियां शांत हो जाती है। निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। ये शाम साम्य स्थितंग माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार का त्याग कर दिया, मन संसार में विजय कर दी। संसार उस पर कभी विजय नहीं कर सकता, उन लोगों ने विजय कर दी संसार पर, जीत गए, संसार हार गया। जब तक राग द्वेष होते हैं, हर्ष शोक होते हैं, आप चारों वेद चारों उपवेद सारे पुनः सब पढ़ लो, पर हर्ष शोक होते हैं तब तक काम नहीं बनेगा। ये शाम साम्य स्थितंग मना, ये शाम मना साम्य स्थितंग, साम्य साम्य न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न संयोग है न वियोग है, न सुख है न दुख है। इसका अर्थ ये मिट नहीं जाते हैं, जीवित रहेगा तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी। परंतु आने पर भी इनमें किसी में सुख दुख का अनुभव नहीं, किसी में राग द्वेष नहीं, अनुकूलता अच्छी लगे प्रतिकूलता बुरी लगे ये नहीं हो, आती रहे। पर साम्य से तक माना, अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर मन में कोई विकार न हो, मन शांत है, तो वे संसार को जीत गए। वो साम्यावस्था का नाम योग है। गीता ने ये कहा समत्वम योग उच्यते, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दो परिभाषा करी गीता ने योग की, दुखों के संयोग का वियोग होना नाम योग है। ये 22वां श्लोक है, तम विद्या दुख संयोग 23वां, छठे अध्याय 23वां, तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम। ये 19, 20, 21, 22 है, 20, 21, 22 में यत 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 शब्द आया है, वो तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसको योग कहा और समत्वम योग समता को योग कहा। मानव प्रकृति और प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद होने का नाम योग और परमात्मा के समरूप में स्थिति करने का नाम योग, दोनों एक ही अर्थ होता है। जड़ता का सर्वथा त्याग, अचिन्न माता की स्वतः स्थिति, इनमें एक कर लो दोनों हो जाएगा, इसका नाम योग कहा है। तो योग करते दृष्टिकोण से यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवर्ति से नियत चित्त है वो आत्मा में ही स्थित रहता है और सर्व कामे जो निष्प्रिय भावनाओं से निष्प्रिय हो गया है वो युक्त योगी कहलाता है। योग की परिभाषा है तो ध्यान योग की परिभाषा में ये योग का अठारवा है ना। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युक्ते तदा, ये योगी के लक्षण है। तो ध्यान योग के करने वाले को तो ऐसी स्थिति होने पर उसका ध्यान योग हुआ, युक्त कहलाता है। और कर्मयोगी के लिए बताया है प्रदहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दिया और आत्मन ये आत्मा अपने से अपने आप में ही संतुष्ट है वो स्थित पर ये कहलाता है। किस पर श्लोक है? दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय का पचपन छठे अध्याय का अठारवा, दोनों श्लोक में मिलान करो तो एक सी बात दिखती है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, वहाँ प्रजाति यदा कामान सर्वान पर पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मतुष्ट, वो स्थित पैकी है। तो कामनाओं का त्याग आत्मा में स्थिति पीछे पहले है, यदा विनियतम चित्तम आत्म चित्त आत्मा में स्थित हो जाए परमात्मा में और कामनाओं से निष्प्रिय हो जाए। यहाँ प्रजाति यदा कामान कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दे अपने आप में स्थिति हो जाए वो स्थित वैज्ञ होता है। वो बात उसमें दो बातें हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्य जो, और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव अवतिष्ठ, दो बात आई। दोनों एक सी होने पर भी बड़ा अंतर है, तो समझना पड़ेगा। यदा विनियतम चित्तम ये पहले होता है और आत्मनिर्भर आत्मा पुस्तक पीछे होता है। यदा विनियत आत्मे निष्क्रिय होगा, निष्क्रिय निष्क्रिय निष्प्रिय काम कामनाओं से रहित किसे होता है। कर्मयोग में कामनाओं से रहित पहले होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है और आत्मन एव आत्मना तुष्ट होता है तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये पिछवनवा श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो पूर्व पर का भेद है, पहला स्थित आत्मा में से तो होता है कि कामनाओं का त्याग हो जाता है, या क्या कामनाओं का त्याग हो जाता है स्वरूप में स्थिति हो जाती है, एक सा है पर बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? यदा विनियतम चित्तम आत्मनि, आत्मा में चित्त स्थित होता है, ध्यान योग है ना, चित्त का चिंतन चित्त का परमात्मा में लग जाना एकदम तदाकार हो जाए तो निरुद्ध अवस्था होती है ध्यान में। और कर्मयोग में कामना का त्याग है, कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर अपने आप परमात्मा स्वरूप स्थिति होती है। तो यहाँ स्थिति होती है चित्त की आत्मा में, वह स्थिति होती अपनी आत्मा में अपने आप में। ख्याल करो थोड़ी बारीक बात है, कृपा करना थोड़ी कृपा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनीय चित्त आत्मनिषित हुआ और कामना से रहित हुआ, ये ध्यान योग की बात। और कर्म योग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान कामनान सर्वसर्वथा कामना का त्याग कर दिया तो आत्मनीय वो आत्मा दोष है, स्वयं आत्मा में ही अपने आप में दोष है, वो योगी होता है। युग से तदा यदा तदगुण में यदा तदा दोनों में जब ऐसा होता तब ऐसा होता क्या ना आ गया होगा ठीक तरह से नहीं अभी ठीक है कोई समय अच्छा है तो नहीं सुनना चाहते सुन लो और क्या बस सुन लो पहले सुन लो हरे चिड़ी पंछे ले उड़गी हरे हरे सुन नहीं कथा जो चिड़िया पंछी लेगी चिड़िया में पाव भर भी बोझ नहीं और पंछी लेगी ये कैसे हो मरा अरे कथा ये कथा सुना नहीं देखा हो कोई समझना चाहे उसकी कहता हूं तो आत्मनि एव आत्मना दोष यस्तु आत्मनि आत्मनिव संतोष और वहां यदा भी तुम चित्त में आत्मनिव अवशिष्ट तो चित्त से जो होगा तो चित्त लगाने से होगा ना ध्यान योग में चित्त अवश्य होता है और योग से चरित्र मना हो जाता है योग भ्रष्ट हो जाता है और यह चित्त है ही नहीं साथ में आत्मनिव कामना और त्याग में गया चित्त तो ये भ्रष्ट नहीं होता ये कर्म योग योग भ्रष्ट नहीं होता है योग भ्रष्ट होता है ध्यान योगी जो चित्त लगाता है मन लगाता है तो कर्म भ्रष्ट होता है कोई योग करे भक्ति योग करे ध्यान योग कोई अरे असली भक्ति योग में कर्म भ्रष्ट नहीं होता असली कर्म योग में योग भ्रष्ट नहीं होता है योग वो मना लगाता ही नहीं वो तो अपने आप लगता है मैं भगवान भगवान मेरे अपने आप को भगवान के नाम लगा दिया मैं भगवान का हूं इसे बड़ा फर्क है जैसे पतिव्रता स्त्री होती है अथवा जैसे कोई गुरु भक्त होता है वो गुरु भक्त हो जाता है तो वो गुरु में मन नहीं एकाग्र करता है पतिव्रता होती है पति में मन को एकाग्र नहीं करती है मान्यता है कि मेरे तो गुरु महाराज है जो कुछ है उसके हाँ में हाथ नाम के नाम ऐसे पतिव्रता है वो भी वो मन नहीं लगाती है अपने आप को लगाती है अपने आप को लगाना और है मन लगाना और है मन है कर्ण मन बुद्धि इंद्रियां ये कर्ण है साधन सिद्ध करने के लिए साधक तमम कर्णम कर्ण है ये और स्वयं है कर्ता स्वयं है कर्ता कर्ता लगता है परमात्मा में कर्ण नहीं लगता है कर्म योग में भी स्वयं लगता है ज्ञान योग में भी स्वयं लगता है भक्ति योग में असली में स्वयं लगता है मन नहीं लगाता है मन जहां लगाते हैं कि कर्म सापेक्ष और अपने आप लगता है कर्म निरपेक्ष कर्म निरपेक्ष कहता हूं फिर कहता हूं कर्म रहित नहीं कहता हूं कर्म रहित तो तत्व है कर्म की अपेक्षा नहीं हुआ कर्म की खास जरूरत नहीं है और ध्यान करोगे तो मन को लगाना पड़ेगा तत्व तो यत्नोभ्यास बार बार मन लगाना पड़ेगा बार बार ये मन लगाना है विजातीय वृत्तियों का प्रवाह रोक करके सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करना होगा ध्यान करो ये होगा निर्ध्यास करो तो ये होगा वह निर्ध्यान की अवस्था परिपक्व समाधि हो जाती है पर मन लगाने से होगी है तो ये योग भ्रष्ट हो सकता है योगा चलित मना योग चलित मना हो जाए योग भ्रष्ट हो जाएगा पर मन लगाता ही नहीं मन तो कूड़े कचरे के साथ ही गया जैसे मकान में कूड़ा करकट पड़ा है तो झाड़ू दे करके कूड़ा करकट को अलग कर दिया कूड़ा करकट अलग देकर झाड़ू को भी साथ दिया झाड़ू और कूड़ा करकट की जात एक है ऐसे मन के संसार की जात एक है सब प्रकृति का कार्य है वो दूर करने में लगा दे बस फिर जाऊंगी खान तो है जैसा रहेगा। मन लगाओगे तो मन साथ में रहेगा तो है अभिनय तम से तम आत्मनीय उसे सोचे। तो ये पातंजलि योग दर्शन का योग होगा युवती के जरिए। और वो कर्म योग है गीता जी का योग समत्वम योग उच्च से समता है। अगर ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना अनुकूलता का असर है ना प्रतिकूलता का असर है न संयोग का असर है न वियोग का असर है न नफे का असर है न घाटे का असर है न किसी जन्म का असर है न किसी मरने का असर है। अपने बरस भाई ये दूर हो रही है चीजें हमें क्या मतलब इससे। ये कर्म योग है भक्ति योग है ज्ञान योग ये विवेक प्रधान है कर्म प्रधान नहीं है विवेक प्रधान। तो विवेक प्रधान में बाधा नहीं लगती है पर विवेक चाहिए दो चीज के लिए एक वैराग्य तेजी का हो एक बुद्धि तीक्ष्ण हो। बुद्धि भी तीक्ष्ण हो तेज तेजी का वैराग्य हो तो विवेक मार्ग काम आता है नहीं तो विवेक मार्ग काम कम आता है। लगन अच्छी हो तो जाता है लगन सच्ची हो कमत इस तत्व को प्राप्त करना है परवाह नहीं लोग अच्छा कहे मंदा करे निंदन तो नहीं बोला निंदा करे प्रशंसा करे धन आवे धन चला जावे और इज्जत हो जाए बेइज्जती हो जाए अपमान हो जाए मान हो जाए कोई परवाह नहीं हमें इस तत्व को प्राप्त करना है वो विवेक प्रधान है। विवेक प्रधान सेम लगता है तो जो पतिव्रता होती है वो चित्त निरोध नहीं करती है अपने आप को अर्पण करती है। फर्क क्या पड़ता है उसमें चित्त निरोध करे वो अवस्था होती है उससे वित्थान होता है और अर्पण करते पर वित्थान नहीं होता। कुमारी छोरी है ब्याह हो गया अब किसी कुमारी हो जाएगी क्या जिस समय चिंतन न करे तो कुमारी हो जाएगी। ऐसे शिष्य बनेगा गुरु स्वीकार कर दिया फिर अलग हो जाएगा तो हो गया तो गुरु को स्वीकार नहीं किया है अलग कैसे हो जाएगी। बार बार चढ़िया को सो तेल है लड़की तेल चढ़ती एक बार ऊपर बस बार बार तेल नहीं चढ़ती तो एक बार होती हो बस। प्रसंग आया है सावित्री का सावित्री सत्यवान इतना सावित्री ने कहा कि तीन एक बार ही होती है आपस में भाई भाई अलग तो बंटवारा एक बार होता है और मैं ये बात देता हूँ वो एक बार होता है और स्वीकार कर लिया पति हमारा एक बार ही होता है वो बार नहीं होता। वहां कहा है सावित्री बहुत सुंदर बड़ी सुंदर लक्षण वाली थी तो पिता के चिंतन हुआ कि ऐसा अच्छा वर मिले मेरी प्यारी पुत्री उसको दूंगा तो उसने सब जगह देखा कोई ऐसा मिला नहीं पिता जैसा चाहता था वैसा उसकी दृष्टि में कोई वर मिला नहीं तो कहा बेटी मैं साथ में बहुत आदमी जाऊँ तुम जाओ तीर्थ यात्रा करो घूमो तुम जिसको स्वीकार कर लोगे उसके साथ ब्याह मैं कर दूंगा ये मेरा काम पर मैं अयोग्य वर को नहीं देना चाहता अब तू स्वीकार करे जो अयोग्य लोग तू जाने मेरे पर जिम्मेवारी नहीं बहुत स्वीकार करे पिता पर क्या जिम्मेवारी मैं तो देखूंगा तो हमारी प्यारी पुत्री के लायक पर देखूंगा तो बीती मेरे को मिला नहीं ऐसा तो सावित्री घूमते घूमते गई वहां सत्यवान सत्यवान को देखा। माँ बाप की सेवा करते हैं उसके पिता का राज्य छूट गया है जंगल में रहते हैं कपड़े कासा कर लिए भंगे और माँ बाप की सेवा करती है सावित्री सत्यवान सत्यवान सेवा करता है वहां रहता है तो उसको देखा तो सावित्री ने स्वीकार कर लिया, उसको नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, अपने मन से स्वीकार कर लिया। वो जब आई घर पर तो कर लिया कि मैंने कर लिया है, ठीक है बेटा, ब्याह मैं कर दूंगा, खूब दहेज देकर अच्छी तरह से प्यार पूर्वक। तो वहां नारद बाबा आ गए, नारद बाबा आए तो राजा ने पूछा कि महाराज मेरी बेटी है जिगर अब्बर होता है सत्यवान, सत्यवान कैसा है लड़का? लाल जी गए क्या कहना, सब गुणों की खान है, बड़ा अच्छा है, माता पिता का भक्त है, ईश्वर का भक्त है, सत्यवान हो बड़ा सत्र अपने पति का दृढ़ रहने वाला पक्का अच्छा साधु पुरुष, गुण बताते ही है। कि महाराज अवगुण भी कुछ गुण बता दू कि अवगुण एक है खास, कि क्या है, कि आज दिन आने से 12 महीनों के बाद आज दिन मर जाएगा, और गुण सब है मर जाएगा। वो गुण क्या काम आएगा, उम्र इतनी है और ठीक है। तो पिता ने कहा बेटी सूती है ना, नाथ जी ने कहा मिशान वो देव ऋषि बाका, देव ऋषि कैसे नहीं होगा। तो सावित्री ने वहां कहा है कि एक बार ही बस होती है, ये स्वीकार कर लिया वो कर लिया कर लिया, चाहे विधवा हो सदवा हो मरो जो कुछ मैंने स्वीकार कर लिया, पिताजी ये दो बार नहीं होता। कि भाई तू सोच ले, विचार करे बेटी, पिताजी सोच लिया। उस जगह ही आया बाबा, फिर राजा गए हैं अपनी पुत्री को लेकर के, उनके पिता से कहा कि मैं अपनी पुत्री देना चाहता हूँ। वो कहता कि मेरा भी विचार है कि आपके साथ हम संबंध करें, पर तो मैं राजा नहीं रहा हूँ, मंत्रियों ने धोखा दिया, राज छिन गया मेरा, पास में कुछ है नहीं, सत्यवान जंगल में जाता है सूखी लकड़ियां लाता है बेच करके, उससे पैसे मिलते हैं, उससे हम गुजर करते हैं, उसे निर्वाह करते हैं, तब से हम यहाँ जंगल में रहते हैं। तो आप कहते हो हम तो ठीक मानते हैं, आप हमारे हम भी राजा थे आप ही राजा, मेरा भी विचार था, परंतु आपकी राजकन्या कैसे रहेगी, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, राजकन्या बड़े आराम से पली हुई है कैसे रहेगी। तो कहा कन्या स्वयं स्वीकार करती है, मैं नहीं करता हूं, बहुत बात ऐसी है, परंतु आप सोच लो अपनी पुत्री के लिए, आपको सोचना चाहिए, यहाँ सुख कोई तरह का नहीं है, बड़ा कष्ट होगा। ब्याह दी गई, सब सामग्री दे रही, दहेज दिया खूब छाट बाट से, सब उन्हें स्वीकार नहीं किया, किया कुछ वहां ब्याह करके वही सोचा बेटा तुम अपने यहाँ रहो, पिताजी चले गए। तो उसने भी कपड़े कसा धारण कर लिए, जैसे पति के वैसे एक साड़ी पहन ली गई सादा, कुछ कोई चीज गहना दूजा बढ़िया कुछ नहीं, हमारे सास और ससुर है पति है वैसे ही मेरे को रहना है। सब महाराज सावित्री बड़ी सावित्री सावित्री बड़ी पतिव्रता थी, तो सेवा करती है, वो खूब सेवा करती, सास ससुर की सेवा करती, रसोई बनाना भोजन करना चंदा पी करना स्नान जल गर्म करना सब तरह जो घर में जितना काम हो खूब तत्परता से उत्साह से काम करती। राजकन्या है बड़ी जिसके सैकड़ों राशियां रहती है गाड़ी, वह करना खूब काम करती है सभी। जब दिन आया वो घंटे से दिन कल दिन है, तो उस दिन अपने सासू से पूछा मैं आज व्रत करना चाहती हूँ, सुहागर स्त्री के लिए व्रत करना मना लिखा है, मनुजी ने कहा बस न करे, उसने अपने सास ससुर से पूछा, पति से पूछा कि मैं आज व्रत रखती हूँ, ज्यादा देगा अच्छा। सास ससुर ने कहा बेटा तेरी मर्जी, जैसे बात। पति ने कहा प्यारी तेरी मर्जी, व्रत रख लिया। दूसरे दिन कहते तो आज पति के साथ जाऊंगी, निकले लड़ने के लिए जाते हैं जंगल में, मैं इनके साथ जाऊंगी। सासू ने कहा, पति से कहा, पति पति ने कहा मैं आज ही नहीं हूँ, मेरे माँ बाप कह जैसे मैं करूंगा, मैं तेरा घर नहीं बनूंगा। जहां सासू ने पगड़ पड़ी, बहुत ज्यादा कहा कि बेटी कल का तो उपवास है, राज घराने की कन्या मामूली घर की थोड़ी है, इतने आराम से पली हुई और उपवास किया हुआ, आज भूखी जाएगी वहाँ कैसे जाएगी। कहते माता जी मैंने आज तो कोई आपसे बात मांगी नहीं है, बड़ा महीना होता है कोई मांगी नहीं, आज एक बात मांगती हूँ, वो तो मेरे को जानी पड़ेगी आपको। तो बेटी कहते ससुर से पूछो कि वो आप इतनी विश्वास आप कर लो। तो ससुर से पूछा, वो कहते देखो ये कन्या राज घराने की कोमल बड़ी ऐसे पली हुई कैसे जाएगी, जंगल का रास्ता जैसे सीर दीन पगा होने का छोड़ा, ऐसी बात है। सास ने कहा सभी बहुत हट करती है तो आप आज्ञा दे दो। ससुर जी कह दिया अच्छा बेटी तेरा मन है तो। फिर पति के साथ कही तो वो जाता है जंगल में, ये पहाड़ है, ये नदियां है, ये वृक्षावली है, ये मुझे घास है, ये जंगल दिखाते दिखाते गए तो एक वृक्ष के नीचे गए तो वृक्ष के ऊपर कई टहनियां सूखी हुई थी, तो वृक्ष पर चला कुदारी लेकर गए तो उनको काट काट नीचे जो सूखी सूखी लकड़ियां थी वो काट नीचे गिराई, उसने लकड़ियां इकट्ठी कर ली। थोड़ी देर बाद कहा कि अब मेरे जी घुट रहा है, बेचैनी हो रही है, मैं ठीक नहीं है, तो आ जाओ नीचे आ जाओ। कुल्हाड़ी फेंक दी, क्या बैठ नहीं सकता, मैं सो जाओ। उस गोदी में माथा दे करके और सो गए। सत्यवान सो गए अपने स्त्री के गोदी में, सो गए। तो सोते हैं, सोने के बाद क्या देखती है कि एक लाल पोशाक ऐसा काला पुरुष भैंसे पर चढ़ा हुआ आया। कौन हो? मैं जमराज हूँ, धर्मराज हूँ साक्षात। किस वास्ते आए हो? कि इस सत्यवान की उम्र खत्म हो गई है, इसको लेने के लिए आया हूँ। तो मैंने तो सुना है कि आपके दूत आया करते थे, कि दूत आए थे, पर तेरी गोदी में सोते हुए भेजा नहीं सकते, दूतों की ताकत नहीं कि पति पता की यहां से उसके पति को ले जाए, तो ये सब में ले जा सकते नहीं। इस बात मैं खुद आया हूँ, इस बात मैं ले जाऊंगा, क्यों उम्र इतनी है, अब कैसे रहेगा ये। तो वह देखती थी नारदी बाबा ने कहा है तो प्राण निकाल कर चले, तो उसे धीरे से शरीर को नीचे सुला दिया और पीछे पीछे चली। कहाँ जा रही है? कहाँ कहाँ? मेरे पति की वजह जा रही हूँ, पिता के घर जन्मी और पिता ने हाथ पकड़ा लिया इनका, इनको मेरा हाथ दे दिया, दान कर दिया, अब ये जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, और मैं कहाँ जाऊंगी। कहते बेटी हमारे मन जीता नहीं जा सकता, धर्मराज की धर्मपुरी में नरक मोहा जीता नहीं जा सकता, कैसे आपकी कृपा से मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, मैं तो जाऊंगी इनके साथ, और मैं कहा आप बताओ कहाँ रहूं मैं, जहाँ जन्मी उसने तो दान दे दिया, अब मेरा कौन है, किस घर हूँ, अब देर की हूँ मैं जाऊंगी। कि तुम बरदान मांग रहे, वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। सावित्री के भाई नहीं थे, राज्य चला गया था और पिताजी अंधे हो गए थे, तो कहे महाराज हमारे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाए। हो गया वरदान दे दिया। कई सारे पीछे जाने लगे, अब कहां जाती हो, आप जैसे पुरुषों से संबंध हो और इतना ही भर मिले, आपका क्या मेरे तुम्हारा। ये धर्म के तत्व को जानने वाले हैं धर्मराज, बारह है इस भागवत में आया है। तो बोल रहे वरदान और मांग रहे कि मेरे 100 भाई हो जाए। मेरे भाई ने, भाई ने 100 हो जाए। दो बार तीन बार एक बार कर राज्य मिल जाए, पूछा मेरे ससुर को राज्य, राज्य मिल जाएगा, आंख ठीक हो जाएगी, 100 बेटा हो जाएगा। फिर अब क्यों जाती है, बार बार के बहुत विशेष प्रशंसा करी है कि आप जैसे महापुरुषों के साथ जाओ, उनको इतना सही वरदान मिले और मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे एक दिन और मांग रहे कि मेरे भी 100 बेटा हो जाए। कि सच्चा तब कैसे जाती है, आपने वरदान क्या दिया है। ऐसा ठगा गया। अब 400 वर्ष की तो उम्र होगी और 100 बेटा होंगे। सावित्री तो ये सब वो देखता रहा, मरने के बाद में था ना जो सब देखा, तो सब जागृत के मेरे को नींद आई, सपना आया मेरे को ऐसा ऐसा। अब टाइम नहीं रहा है, दिन थोड़ा ही है, चलो पीछे पहुंचेंगे नहीं, अपने आश्रम में चलो। ऐसा मेरे को सपना आया। सत्यवान कहता है ऐसे जमराज आए, पांच डाल कर ले बातें सभी। तो वहां एक बार, एक बार ही होता है देना, एक बार कह दिया तो दानी सी तीन एक आने सकल सर, एक बार ही होता। तो सत्यवान वो सभी फिर भी जाके फिर राज्य भी मिल गया, आगे भी ठीक होगी, 100 भाई भी हो गया, सावित्री भी 100 बेटा हो गया। 100 बेटा मांगे मांगे थोड़ा क्या मांगे, धर्मराज से मांगा है। आप जैसे महापुरुष मिले तो कोई जीवन मुक्त महापुरुष, आप जैसे समर्थ, फिर कोई मांगना बाकी रहे मांगना। तो ये एक बार ही होता है। तो पति प्रसार है पति के पास, और एक बार भगवान, इसमें कर्ण नहीं है, मन बुद्धि लगाना नहीं है। पति प्रसार है ना, पति मान लिया बस, स्वीकार कर दिया एक बार भी। ऐसे चेला एक बार भी कर देता है, एक बार ही हो गया हो गया हो गया। बार बार मन लगाना, ध्यान करना, ये चीज नहीं है। तो ये चीज है, ये बात हो जाती है। तो कर्म निर्देश साधन है, ऐसे गीता का जो समत्वम योग उच्चते है, ये कर्म निर्देश है, साधु और साधन की पुस्तक है। कर्म पहले निकली है साधु साधन, उसमें साधन है कर्म सापेक्ष, कर्म निर्देश दो, और साध्य है कर्म रहित। साध्य तो कर्म रहित है, साधन है कर्म निर्देश, कर्म सापेक्ष दो, ऐसे उसमें बेचना आया है। तो कर्म रहित कैसे होता है, कर्म सहित कैसे होता है, कर्म निर्देश कैसे होता है, उसे पुस्तक बनाना है। गीता प्रेम छपा यहाँ होगा, पुस्तक मिलती है उसका तो होगा ही यहाँ। आप उसको देखे, अध्ययन करें, पता लगे। तो इसमें कर्म भी लगाना पड़ता है। पतिव्रता होती है, उसको पति का चिंतन करना नहीं होता है, पति को याद करना नहीं होता है, और मैं भूल होती ही नहीं है, याद तो करती ही नहीं और भूल होती ही नहीं। लेकिन तो वैसा कभी नहीं होती कि मैं कुंवारी हो गई, भूल तब माने कि अपने को कुंवारी माने, मैं कुंवारी हूँ तो भूल गई। स्वप्न में भी ब्याही माने ब्याही हुई हूँ, तो भूल तो होती ही नहीं, याद करती ही, कोई चिंतन करती है, कोई चिंतन की बात नहीं होता है, चिंतन बस अलग है, चिंतन है बस ये अपना है, अपना है। अब अपने और चिंतन क्या करे, ऐसे भक्ति में भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, यह है मीरा बाई का स्वरूप, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा में कोई, ये जिसके वो मीरा बाई, जिसके ऐसा भाव है, भाई हो तो मीरा बाई, बहन हो तो मीरा बाई, बालक हो तो मीरा बाई, बूढ़ा हो तो मीरा बाई, कोई क्यों न हो एक ही बात है, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, तो मेरे से गिर गोपाल कई आदमियों को हो जाएगा, पर दूसरा न कोई इसमें फैल हो जाते हैं, माँ बाप है, धन संपत्ति है, शरीर है, मेरे और भी है, तो भाई काम नहीं बनेगा। एक बाण करुणा निधान की, सो पिए जाके घसीन आन की, एक एक आसबुक, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर से आते सातवास, तो इसका नाम योग है। एक बार स्वीकार कर लिया ये योग संबंध हो गया, स्वीकार कर लिया हो गया, सावित्री को समझाया, पिता ने समझाया, नारद बाबा ने कहा कि बेटी 12 बजे की उम्र है, आज दिन बन जाएगा, कैसा मर जाओ जी जाओ कुछ, मैंने तो स्वीकार कर लिया, कहा नहीं उनको, नहीं कहा किसने, मन से कैसे कहने की जरूरत नहीं, क्या बात है। इस तरह से स्वीकार और अस्वीकार ये कर्ण रहित है, स्वयं में स्वीकृति होती है, इस बात वहाँ भूली नहीं होती, मन बुद्धि से चिंतन होता है वहाँ भूली होती है, याद नहीं जैसी बात है, तो याद करते हो आप स्वयं बदलते हो तो भूल थोड़ी भूल हुई, स्वयं चेला बन गया तो याद करना पड़ता है, चेला बन गया चेला बन गया चेला, ऐसे याद करना पड़ता है, ब्याह हो गया ब्याह हो गया, एक माला फेरी एक माला भी ऐसी सिंह वैसे पूछ हो गई, एक माला भी सुनती ब्याह हो गया ब्याह हो गया ब्याह हो गया, अरे स्वीकार हो गया बस,